पिछले अध्याय में आपने देखा कि मानवी और वेद के बीच पार्टी में कुछ हुआ। गौतम को रमेश मेहरा पर शक हुआ और रुचिका सुधीर की शादी हुई। इस अध्याय में रमेश मेहरा प्रियंका के कमरे में जाता है, गौतम उसे ट्रैक करता है और प्रियंका के कमरे में एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है। रुचिका और सुधीर शादी के बाद बातचीत करते हैं। मानवी और वेद अतीत की बातों पर चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट। अगले दिन सभी को मुंबई लौटना था क्योंकि मेहरा फैमिली सुधीर और रुचिका के रिसेप्शन का आयोजन मुंबई में करने वाली थी। इससे पहले जो प्रोग्राम हुए थे उन्हें शेखावत फैमिली ने संभाला था। अब सुबह का नाश्ता खत्म होने के बाद सभी लोग अपनी तैयारी में लग गए थे। अयान की पूरी फैमिली सुबह बहुत जल्दी निकल गई थी क्योंकि सभी ने कई दिनों से मुंबई छोड़ रखी थी, लेकिन अयान वहीं रुका। वो बाद में वेद से मिलकर आने वाला था। रास्ते में एयरपोर्ट जाते समय आरिफ ने अपनी बेगम से कहा, अयान में कितना बदलाव आया है। इस शादी के लिए वो कितने दिनों से रुका हुआ था और फिर भी उसने कभी गुस्सा नहीं किया, शराब की तरफ उसका झुकाव भी नहीं दिखा। नुसरत बेगम ने कहा, शराब को उसने अपनी बीमारी की वजह से दूर रखा होगा। उसे पता है कि अगर वो शराब पी लेगा तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। जुबैर मुस्कुराया और बोला, नहीं मॉम, अयान में बहुत बदलाव आया है। वो अब बिल्कुल शांत है, गुस्सा नहीं करते और पहले की तरह मजाक और हंसी से सबको खुश करते हैं। अब वो जोया फूफो से तलाक लेने की बजाय उसकी रुखसती करवाना चाहते हैं। जैसा अयान को हम पहले जानते थे, वो अब बिल्कुल अलग और अच्छा इंसान बन गया है। जुबैर ने भी अपनी सहमति जताई। दानिश ने कहा, हाँ, अयान अब उस इंसान से बिल्कुल अलग है जिसे हम जानते थे। ये बदलाव सच में देखकर अच्छा लग रहा है। दूसरी गाड़ी में शयान भाई और उनकी पत्नी यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनकी बेटियां जारा और फिजा भी थीं। तीसरी गाड़ी में नावेद राजा खान, उनकी पत्नी और जोया मौजूद थीं। गाड़ी में बैठते ही अयान की बात चली। जोया की नज़रों में थोड़ी चिंता थी। उसने सोचा कि अयान बहुत बदल गया है और अब वो उसकी रुखसती के लिए उत्सुक है, लेकिन क्या वो अतीत की गलतियों को भुला पाएगी? नावेद साहब ने कहा, जोया, अयान बहुत बदल गया है। अब वो तुम्हारी रुखसती के लिए पूरी तरह तैयार है। उसे कोई एतराज़ नहीं होगा यदि आप दोनों अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताना चाहें। हर इंसान की गलतियों का इलाज नहीं होता, लेकिन अयान सच में अपनी गलतियों से पछता रहा है। एक्सीडेंट के बाद उसने खुद को सुधारने का ठाना है। जोया चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। बात सच थी कि अयान बहुत बदल गया था, लेकिन उसके साथ जीवन बिताना उसके लिए बेहद कठिन लग रहा था। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अतीत में अयान के साथ कई लड़कियां घर तक आती थीं। क्या वो उन चीज़ों को छोड़ पाएगा और क्या जोया इतनी बड़ी गलतियों को माफ़ कर सकेगी? सारा ने धीरे से कहा, देखो जोया फूफो, अयान चाचू आपके लिए जो प्यार महसूस करते हैं वो सच्चा है। उसने फूफो और सबके सामने अपनी गलती मानी और अब वो बदल गए हैं। देख लेना, आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा। लेकिन जोया के मन में अभी भी संदेह की गहरी परतें थीं। अतीत की सारी यादें, अयान की पुरानी आदतें और उनकी की हुई गलतियां उसके दिल में आज भी ताज़ा थीं। उन सबको भूल पाना उसके लिए आसान नहीं था। जोया जानती थी कि अयान को पूरी तरह माफ़ नहीं किया जा सकता। उसने अपनी आंखों से अयान की बहुत सी गलतियां देखी थीं। उसे याद था कि कैसे अयान के साथ घर तक लड़कियां आया करती थीं। उसने खुद कई बार देखा था कि अयान का और लड़कियों के साथ किस तरह का रिश्ता था। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी आंखों देखी हुई हकीकत थी। यही वजह थी कि ये फैसला लेना जोया के लिए बेहद मुश्किल था। एक तरफ वो देख रही थी कि अयान अब बहुत बदल चुका है, सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, गुस्सा नहीं करता, शराब से दूर है और यहाँ तक कि तलाक की जगह अब उसकी रुखसती करवाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल उसे बार बार याद दिलाता कि यही वही इंसान है जिसने उसके भरोसे को तोड़ा था। जोया पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के कागजात पर साइन कर चुकी थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये रिश्ता निभाना अब उसकी जिम्मेदारी थी। मगर उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। उसका मन जैसे बेजान सा हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी में बैठे सभी लोग हंस बोल रहे थे, लेकिन जोया के लिए ये सफर बेहद लंबा लग रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वो अयान को सच में एक दूसरा मौका दे पाएगी? क्या वो अपने अतीत के जख्मों को भर पाएगी? क्या वो उस घर में लौटकर सच में खुश रह पाएगी जहां कभी उसके आंसू भी किसी ने नहीं देखे थे? जोया ने गहरी सांस ली। शायद अब उसे वक्त को अपने हिसाब से चलने देना होगा। शायद अयान सच में बदल चुका है, लेकिन क्या उसका दिल उसे एक बार फिर भरोसा करने की इजाज़त देगा? ये सवाल अभी भी उसके दिल में गूंज रहा था। मेहरा फैमिली के जो घर के सबसे बड़े थे, सबसे आगे निकल गए। उन्होंने बच्चों को एयरपोर्ट पर कहा कि वे उन्हें सिर्फ 10 मिनट का समय दें ताकि वो घर जाकर स्वागत की तैयारी पूरी कर सकें। आज सिर्फ रुचिका का ही नहीं बल्कि मानवी का भी गृह प्रवेश होना था। ये बात मानवी को पता नहीं थी। बड़े जानबूझकर थोड़ी देर पहले घर पहुंचे थे ताकि घर के सभी लड़के लड़कियां 15-20 मिनट बाद पहुंचे और रस्में ठीक से हो सकें। गृह प्रवेश की रस्मों के लिए घर के हॉल के दरवाजे पर वेदिका खड़ी हुई थी। जैसे ही वेद अंदर आया, उसने वेदिका को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मॉम, ये रस्में वाली चाची को करनी चाहिए, आखिर सुधीर और रुचिका का गृह प्रवेश है। वेदिका मुस्कुराई और बोली, घर की बड़ी बहू आज मेरी आई है, पहले तुम दोनों आओ और अपनी बहू को भी साथ लेकर आओ। अवनी जो थोड़ी देर पहले घर पहुंच चुकी थी वापस बाहर आ गई। वेद ने उसे गोद में उठा लिया। वेदिका ने उन तीनों, वेद, मानवी और अवनी का गृह प्रवेश कराया। अवनी बहुत खुश हो रही थी, मानवी के चेहरे पर की गहरी मुस्कान थी। आज उसने मेहरा परिवार की बहू के तौर पर घर में कदम रखा था। उसके बाद रुचिका का गृह प्रवेश हुआ। सभी बच्चे और फैमिली मेंबर्स घर के अंदर आ गए थे। जैसे ही सब अंदर आए, वेद अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वेदिका ने उसे रोक लिया, रुको, बहू के साथ बैठो। वेद ने मानवी का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अपनी मॉम के साथ बैठते हैं। अवनी, वेद और मानवी तीनों एक सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वेदिका ऊपर गई और वापस आई। उसके हाथ में ज्वेलरी का एक बड़ा डिब्बा था। वो डिब्बा मानवी की गोद में डालते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारे लिए है। मानवी ने थोड़ा संकोच से कहा, मॉम आपने वहाँ भी इतनी शॉपिंग करवाई और अब भी। वेदिका मुस्कुराई और बोली, अब तुम मेहरा परिवार की सबसे बड़ी बहू हो, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, अभी तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तभी घर का मैनेजर बलवंत आया। उसने एक फाइल वेदिका के हाथ में दी और सीधे मानवी की गोद में रख दी। हेलो बेटा। मानवी ने हैरानी से बलवंत मेहरा की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? बलवंत मुस्कुराए, ये तुम्हारे नाम पर एक खूबसूरत सा बंगला है, जय बंगला, ये अब तुम्हारा है और इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज के पेपर भी हैं जो तुम्हारे नाम किए गए हैं। रमेश मेहरा और वेदांत ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को हैरानी हो रही थी कि बलवंत मेहरा इस तरह अपनी प्रॉपर्टी बहू के नाम कर रहे हैं। वेद हंसते हुए बोला, डैड आप मुझे क्या दे रहे हैं? बलवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी झोली में मानवी भी डाल रहा हूँ, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वेद ने मुस्कुराते हुए मानवी की तरफ देखा और हल्के से उसका हाथ दबाते हुए बोला, डैड आप चिंता मत कीजिए, आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसे बहुत अच्छे से निभाऊंगा। और हाँ, वेद ने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा। बलवंत ने हंसते हुए आसिफ की तरफ देखा, पूरा बिजनेस अब तुम देखो, मुझे तो बस मेरी पोती चाहिए और कुछ नहीं। उन्होंने अवनी को गोद में उठा लिया और वेद की तरफ देखते हुए बोले,
हमारा काम तो बस अब उसे स्कूल छोड़ने और लेने का है, और हाँ अगर इसके कोई भाई बहन और भी आ जाएं तो और अच्छा होगा। वेदिका ने हंसते हुए कहा, आप तो बहुत लालच कर रहे हैं। फिर मजाक में बोली, वैसे तमन्ना तो मेरी भी यही है। ठीक कहा ना मैंने अवनी, तुम्हें भी तो कोई छोटा भाई या बहन चाहिए होगा खेलने के लिए। अवनी ने मासूमियत से कहा, हाँ चाहिए। सभी जोर से हंस पड़े और वहां का माहौल खुशी से भर गया। बाद में सबने रुचिका को गिफ्ट दिए। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन ये सब रीना देख रही थी। उसके मन में हल्की सी कसक थी, क्योंकि उसके घर में उसकी कभी कोई खास अहमियत नहीं रही थी। शादी के समय उसके ससुर ने उसे ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं दी थी और उसका पति भी उसे पूरी तरह मानता नहीं था। मगर रुचिका के लिए ये सब बात मायने नहीं रखती थी। वो बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती थी और उसके अपने मॉम डैड ने उसे पहले ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज गिफ्ट की हुई थीं।